पल पल की खुशियां। वेलकम ऑल आवर ऑडियंस टुडे एंड वी आर हैव विद अस टुडे वन ऑफ द सीनियर हेल्थ केयर फिजिशियन फ्रॉम लखनऊ, डॉक्टर दिलीप वर्मा। डॉक्टर दिलीप वर्मा कम्स विद अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन टू डिकेड्स। डॉक्टर वर्मा इज नोन फॉर हिज क्लैरिटी, हिज सिंप्लिसिटी एंड हिज प्लेन डायग्नोसिस। Dr. Dilip Varma, we are happy to have with us in the Happy Moments. Thank you very much for sparing your valuable time from your busy day.
Thank you so much for inviting me. I am Dr. Dilip Varma. I am practicing in Lucknow for the last 2 decades. My main focus is to prevent the lifestyle diseases that is burden of the society and it is increasing day by day. Lifestyle starts from the childhood itself, and with the current scenario we can prevent so many diseases like diabetes, hypertension, obesity, thyroid, cancers and so many diseases. At the same time, the pollution that is generating from the different sources is also the culprit of the many diseases. So not we should focus at the personal level, but we should communicate to our community, as well as the government should also take the steps to prevent the many diseases that is prevalent in society.
Thank you very much, Dr. Varma, for setting the context of the podcast. You made my life easy. Dr. Varma, my first question to you is, how come you became a doctor? Was it a family pressure or your own wish? आपने medical profession कैसे choose किया?
Medical profession मेरा choose करने का जो main reason था कि मैं एक society को जो belong करता हूँ, I belong to a small district nearby Ayodhya, that is Basti, and मेरा जो हमेशा ये target था कि हम लोगों को कैसे healthy बना सकें, कैसे awareness दे सकें, कैसे एक proper जो guidance है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है वो दे पाऊँ, तो उसमें काफ़ी कुछ मैं सफल भी रहा। starting 20 years जो मेरी journey है वो मैं railways से एसोसिएटेड था, जहाँ पर मैंने अभी अपना वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया है, और मैंने लोगों को हेल्थ डिजीजेज जो प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक जैसे लाइफ स्टाइल डिजीजेज, उसके बारे में काफ़ी कुछ मोटिवेट किया। लोग हमेशा अप्रिसिएट भी करते रहे क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर
जी।
तो जो हम लोग सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएँ हैं उनको एक मेडिकल प्रोफेशन ऐसा नोवल प्रोफेशन है कि हम बहुत सारे लोगों का हेल्प कर सकते हैं, जो कि दूसरे प्रोफेशन से ये डिफरेंट होता है। लाइक जैसे अभी कोविड का एक टाइम आया था, कोविड में भी लाइफ स्टाइल के अलावा जो इन्फेक्शियस डिजीज हुआ, तो लोगों को मोटिवेट करना हेल्थ के लिए, आगे कभी जैसे दोबारा समस्या होती है, कोई ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज आता है, तो उसके लिए हम लोग कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि मेक योर सेल्फ हेल्दी। एंड जो अभी कोविड के बाद में काफ़ी अवेयरनेस आया है ऑल ओवर वर्ल्ड, लाइक फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटी टू डाइट एंड ऑल दीज थिंग्स, तो यही हमारा कारण था मेडिकल प्रोफेशन का कि हम लोग जो एक मेडिकल प्रोफेशन है दैट इज नोबल प्रोफेशन, और हम एक अच्छे से सोसाइटी को सर्व कर पाए, जिसमें कि अभी फर्स्ट 20 ईयर्स जो मेरा रेलवे के साथ एसोसिएशन था, और अभी लास्ट 6 मंथ से अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ मैं इसमें कामयाब रहा। एंड फ्यूचर में भी एक हमारी कई सारी प्लानिंग है, तो उसमें हम सक्सेसफुल रहेंगे
जी। थैंक यू डॉक्टर वर्मा। जैसे आपने बताया कि यू कम फ्रॉम अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट नियर अयोध्या, एंड शुरू से ही आपके मन में था कि लोगों की हेल्प की जाए, तो पहले 20 साल आपने वो अपने आप एक बड़ा लाइफ का हिस्सा है कि जैसे आपने रेलवे हॉस्पिटल्स के डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हुए यू हैव क्रिएटेड एन इम्पैक्ट, एंड देन यू टुक अ बोल्ड इनिशिएटिव ऑफ कमिंग इन अ प्राइवेट प्रैक्टिस एज वेल। डॉक्टर वर्मा, जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल डिजीजेस is the main concern of today. When you see lifestyle diseases, what is the basic cause? क्या है इसका जी?
जो basic cause है, basically जैसे जो health का definition start होता है, जो WHO का definition है कि health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Means कि आपका जो physical health ठीक रखना है, mental health ठीक रखना है and social. आपका अगर आप physically fit हैं, mentally and socially fit नहीं है, तब भी आप healthy नहीं कहे जाएंगे. तो जो आपका लाइफ स्टाइल होता है वो फिजिकल से स्टार्ट टाइप की, आपका जैसे आजकल बहुत सारा सेडेंटरी जॉब हो गया है, डेस्क वर्क हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को टाइम नहीं मिलता है और अनहेल्दी हो रहे हैं लोग. जो फूड स्टाइल है, लाइक कि जो आपका ऑनलाइन बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, स्विगी है, जोमेटो है, जहाँ पर कि आपका बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं होता कि कैलोरीज क्या है, उसका कंटेंट क्या है. एंड थर्ड इज सोशल, जैसे अभी एक पहले कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी और करंट टाइम में अभी सब इंडिविजुअल फैमिली है. इनफैक्ट इंडिविजुअल में भी घर में भी एक दूसरे से लोग बात नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं. तो जो हमारा फोकस है, इट शुड बी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ऑल दीज थिंग्स. तो जिसपे हमें अपने लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे एंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहिए, और लोग कर भी रहे हैं. काफ़ी सारी सोसाइटी हैं जो कि इसमें काफ़ी सारा योगदान कर रही हैं. लोगों को मोटिवेट करना चाहिए. एंड मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइक कि ये चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए. बच्चों को मोटिवेट करना है योगा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग के लिए, नेचर में बाहर निकलने के लिए, कि आप घर में ना बैठ करके बाहर निकलिए, पार्क्स में जाइए, जहाँ जिसको जो स्पेस होता है वहाँ पर उसको यूटिलाइज करिए, जिससे कि हम अपने एक हेल्दी सोसाइटी बना पाए.
जी हाँ डॉक्टर वर्मा, जैसे आपने अभी बताया कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, नाउडेज अक्रॉस द सोसाइटी, छोटों में बड़ों में हम स्ट्रेस की बात सुनते हैं. बच्चे भी कंप्लेंट करते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस है. इवन ऑफ लेट हमने कुछ महीने पहले बीच बीच में न्यूज आती रहती है, स्पेशली फ्रॉम कोटा, दैट चिल्ड्रन आर डूइंग सुसाइड. So what is the triggering factor that stress has become so common? In spite of this, the comforts have increased in society.
सबसे मेन कारण है जो कंपटीशन है एक दूसरे का, और सोशल प्रेशर भी कई सारे होते हैं. बट कोई भी आपका स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्ट्रेस, माइल्ड स्ट्रेस जो होता है, डेट इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट. बट अगर ओवर स्ट्रेस है तो वो डेफिनेटली डेट्रीमेंटल हो सकता है. तो दैट्स वाई जो हमारा सोसाइटी, जैसा मैंने बताया कि बच्चों को शुरू से ही इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए. कई सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो शुरू से योगा, एक्सरसाइज एंड बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, एक दूसरे से मिलना, जो अभी आजकल काफ़ी कम हो गया है. तो वो हमें उसी लेवल पर स्टार्ट करना है, जिससे कि जब बच्चे बड़े हों तो उसमें जो है एक उनको स्ट्रेस कुछ आता है, उसको ओवरकम करने की उनकी बार कैपेबिलिटी हो. जो सोसाइटी में है, सोसाइटी में एक दूसरे का हेल्प करना, जैसे सपोज कोई किसी पेशेंट को डिप्रेशन होता है या किसी को एंग्जाइटी होती है, तो उसको अपनी बातें पब्लिक से, अपने घर वालों से, अपने जो बहुत अच्छा फ्रेंड हो वो जरूर शेयर करना चाहिए. क्योंकि कभी कभी जो है ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इसमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है. तो टाइमली आपको जो भी कुछ इश्यू होता है उसको छिपाए नहीं, आपका जो भी सबसे अच्छा फ्रेंड हो उससे डिस्कस करिए. उसके साथ में कई सारे ऐसे फोरम आ गए हैं, जैसे इंडिया में है एक कुछ ऑनलाइन रहता है कि आप अपनी जो समस्याएं होती हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं. अगर आप किसी पब्लिक से, किसी फ्रेंड से, किसी फैमिली से डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप शेयर करके और उसका जो है एक कहीं ना कहीं उसमें ओवरकम कर सकते हैं आप समस्या से.
जी थैंक यू डॉक्टर, बिकॉज ये इतना ज्वलंत टॉपिक है आजकल. और आपने सही बोला कि आजकल लोग फैमिली में बात नहीं करते, फैमिली वैसे ही छोटी हो गई, और उसमें अगर तीन या चार लोग मैक्सिमम हैं वो भी आपस में बात नहीं करेंगे, तो यस देन डिप्रेशन एंड ऑल दोस विल सफर. मैं बीच में आऊँगा डायबिटीज के ऊपर. डायबिटीज ग्लोबली इट्स नोन नाउ दैट इंडिया इज द वर्ल्ड्स कैपिटल ऑफ द डायबिटीज, तो इसमें कोई गर्व की बात नहीं है. और डायबिटीज के बारे में लोगों को नॉलेज बढ़ गई है, बट केसेस भी इतने बढ़ गए जी. तो व्हाट इज कैन बी डन टू प्रिवेंट डायबिटीज फर्स्ट?
डायबिटीज का जैसा स्टार्ट में बताया मैंने कि डायबिटीज के लिए एक तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका डाइट का पैटर्न कैसा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आप डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस डाइट है या नहीं है, जिसमें जो आपका डाइट लेते हैं जिसमें शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है एंड फैट है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं इनका बैलेंस है कि नहीं है, जो कि कार्बोहाइड्रेट जैसे जो भी डाइट हमारा होता है इट शुड बी अराउंड 40-50%, प्रोटीन शुड बी 30% एंड कार्बोहाइड्रेट 20%, तो ये रेशियो आपका प्रॉपर है कि नहीं है। दूसरा ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है लाइक कि जो आप फूड लेते हैं जिसमें कि विटामिन्स प्रॉपर हैं कि नहीं है, जिसमें मिनरल्स प्रॉपर हैं कि नहीं है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाइट में। लाइक कि जो आपका डाइट है शुगर है फैट है या प्रोटीन है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। जो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है वो जनरली फ्रूट से मिलता है, तो फलों में भी फलों का भी जो है आपका क्वांटिटी प्रॉपर होना चाहिए। जो फल हैं उसमें कई सारे एडवाइस होते हैं, लाइक जब आप फल जो भी फ्रूट्स आप यूज कर रहे हैं, जो डिफरेंट आप फ्रूट्स देखते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर के फ्रूट्स होते हैं, तो डिफरेंट कलर्स के जो फ्रूट होते हैं उसमें डिफरेंट कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जो सीजनल फ्रूट हो वो लीजिए, डिफरेंट टाइप के फ्रूट लीजिए, और जो फूड का कंटेंट होता है फ्रूट्स प्लस जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका ऑलमोस्ट आपका 2/3 के आसपास जो टोटल आप इनटेक लेते हैं वो होना चाहिए। जैसे डैश डाइट होता है, एक मेडिटेरियन डाइट होता है, मेडिटेरियन डाइट जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स होता है, प्रोटीन रिच फूड होता है, जो कि मेडिटेरियन रीजन होता है वहाँ पर करते हैं, तो वो फॉलो करना चाहिए। डायबिटीज के साथ में एक डैश डाइट होता है जो हाइपरटेंशन के लिए होता है, डैश डाइट होता है स्टॉप टू स्टॉप द हाइपरटेंशन, तो उसके लिए भी आपका वही सेम लगभग पैटर्न होता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा लेना है कैलोरीज कम लेनी है। इससे काफ़ी कुछ हम अगर डाइट अच्छा रखें फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें एंड सोशल मींस की जैसे सोशल आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए, तो उससे भी स्ट्रेस कम होता है, तो उससे डायबिटीज प्रिवेंट किया जा सकता है
जी। वर्मा जैसे आपने बताया कि डिफरेंट कलर के फ्रूट्स हैं उनके अलग अलग उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और सीजन के फ्रूट लेने चाहिए। अरुण वर्मा एक क्वेश्चन है जो काफी प्रोबेबली डायबिटिक पूछना चाहते हैं, बट कई लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर वो डायबिटीज की दवाई पर शुरू हुई तो उनकी सेक्सुअल पावर कम हो जाती है, डरते हैं नहीं जी मैं ठीक हूँ बस थोड़ी थोड़ी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
जो डायबिटीज में सेक्सुअल प्रॉब्लम आता है वो मेन रीजन होता है जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज होता है, जिसमें कि जो माइक्रोवैस्कुलेचर होता है उसका ब्लॉकेज होता है। लाइक अगर कोई पेशेंट है 30 की एज में डायबिटीज होता है और उसको 40 की एज में एवरीथिंग इज ओके, बट उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर हो रही है, इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका जो माइक्रोवैस्कुलेचर प्रॉब्लम होता है इट शोज कि आपका उसके साथ में कार्डियक भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपका आईज में प्रॉब्लम भी हो सकता है दैट इज माइक्रोवैस्कुलर, एंड किडनी में भी हो सकता है, तो आपको अलर्ट होना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो है फिर डिटेल चेक करना है, जैसे कोलेस्ट्रॉल आपका कितना है, आपका विटामिन डी लेवल बॉडी में कैसा है, विटामिन B12 लेवल कैसा है, जो कि आपको बैलेंस करके ही चलना चाहिए शुरू से। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली टाइमली अलर्ट हो जाना बहुत जरूरी है एंड डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है।
थैंक यू डॉक्टर, दिस इज सच अ कॉमन क्वेश्चन बट सम टाइम इन आवर सोसाइटी पीपल हेजिटेट टू टॉक अबाउट दिस। डॉक्टर वर्मा आपने शुरू में जब स्टार्ट किया तो आपने बताया कि जी आजकल कैंसर के केसेस बहुत बड़े हैं, पहले कैंसर था बट रेयरली सुनने में आता था, लेकिन आजकल हम जहां देखते हैं कैंसर के हॉस्पिटल इतने सारे बढ़ गए, एवरी मेजर हॉस्पिटल हैज गॉट अ सेपरेट विंग ऑफ कैंसर पेशेंट्स, तो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कैंसर पेशेंट्स?
जो कैंसर में इंक्रीज अभी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, केसेस की बहुत वृद्धि हो रही है, इसका मेन रीज़न जो है वो आपका जो पोल्यूशन है, जिसमें एयर पोल्यूशन भी काफ़ी कॉमन है, वाटर पोल्यूशन है, एंड जो डाइट होता है, डाइट में जो भी डाइट में इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से भी कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। काफ़ी सारे रिसर्च के अनुसार ये देखा गया है कि जो आपका इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड जो आजकल यूज ही करना पड़ रहा है उनका हाफ लाइफ मोर देन 100 ईयर्स, मीन्स कि आपकी डेथ हो जाएगी तब भी उसका जो अगर बॉडी में आपके डिपॉजिट हो गया जो फैट सॉल्युबल ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होते हैं तो उनका इफेक्ट बना रहता है। तो लाइक कि आपको जैसे अभी इंडिया में काफी कुछ चल रहा है ऑर्गेनिक का, तो उसके बारे में काफी कुछ नॉलेज आजकल गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है और हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को जो भी फूड है वो ऑर्गेनिक फूड की तरह शिफ्ट की तरफ शिफ्ट करना चाहिए।
जैसे आपने बताया कि इंसेक्टिसाइड यूज बढ़ गया है और इसका इट रिमेंस इन बॉडी फॉर 100 इयर्स, मोर देन 100 इयर्स, तो व्हाट एज अ सोसाइटी एज अ गवर्नमेंट व्हाट शुड बी डन टू मेक सोसाइटी हेल्थी।
जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड होते हैं लाइक गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव हो सकता है कि जो परमिसिबल हैं उन्हीं को ही मार्केट में सेल के लिए परमिट करना चाहिए। कई सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो गवर्नमेंट से परमिटेड नहीं है वो भी सोल्ड आउट हो रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट काफ़ी कुछ ट्राई करती भी है। एंड सोशल अवेयरनेस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनिक अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट चल रहा है जिसमें कि प्रोडक्शन थोड़ा स्टार्टिंग में तो कम होता है बट ओवरऑल करके जो आपका अगर हेल्थ ठीक है तो वो कंपनसेट हो जाता है। थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम होता है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ काफी कुछ पब्लिक को अवेयर करना है और उसकी तरफ मूव करना है।
जी, अवेयर करना है, उस तरफ मूव करना है। तो मम्मा, अगर मैं लाइफस्टाइल की वक्त अगर मैं अर्ली एज हार्ट अटैक की बात नहीं करूंगा तो दैट विल नॉट बी राइट। आजकल पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि इवन इन 40s इवन सम सेलिब्रिटीज इन इवन सम यू कैन से मॉडल्स they have gone to gym and they have very fit body otherwise but they have faced a heart attack. iski kya triggering factor hai jo usko kaise rok sakte hain?
common triggering factor hai like ki jaise jo aapka diet hai proper nahi hai, jo lifestyle nahi hai, agar aapka sleep proper nahi hai 7 to 8 hours ka hai to jo aapke body mein jo arteries hoti hain jo usme basically atherosclerosis bolte hain jisse ki aapka arteries block hota hai wo usme jo plaque hote hain like जो उसके अंदर जो है फैट डिपॉजिट होता है वो अनस्टेबल प्लाक्स फॉर्मेशन होता है। अगर आपका जो है उसमें जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें जो सबसे इनर लेयर होती है इंडोथीलियम बोलते हैं, इंडोथीलियम से कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोटेक्टिव होते हैं, तो जो लाइफ स्टाइल चेंजेज हो रहे हैं उसकी वजह से वो प्लाक जो है वो अनस्टेबल हो रहे हैं। तो कभी भी अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी के साथ में बहुत ज़्यादा क्रॉस कर लिया तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ रही है। तो जो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल तीनों का ही कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, जो हमारा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, जो हमारा डाइट पैटर्न ठीक नहीं है, प्रॉपर स्लीप नहीं हो रहा है, जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से ही ये सारे जो समस्याएं हैं वो हो रही हैं।
जी, थैंक यू डॉक्टर, बिकॉज ये बड़ा ही टॉपिक बिकमिंग अ कंसर्न दैट मोर द मोर एज इज ग्रोइंग द यंग पीपल फेस विद दिस। एक पर्सनल क्वेश्चन है पूछूंगा आपसे, आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं, व्हाट इज योर शेड्यूल?
मेरा शेड्यूल बिल्कुल फिक्स होता है, लाइक कि चाहे वो विंटर सीजन हो चाहे समर सीजन हो, अराउंड 6 o'clock मॉर्निंग में उठना होता है, रात में 10 से 11 के बीच में सोने का टाइम होता है। मॉर्निंग में उठ करके लाइक कि जो मेरा 1 से 1.5 घंटे का टाइम होता है वो डिवाइड कर रखा है मैंने, लाइक कभी योगा है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, आई लव साइकिलिंग। एंड जो डाइट का पैटर्न होता है लाइक मॉर्निंग में उठ करके एक गिलास गुनगुना पानी शहद के साथ में और नींबू के साथ में ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। एंड एट द सेम टाइम ओमेगा रिच फूड लाइक चिया सीड एंड फ्लैक्स सीड, इसको भी मेरा ऑलमोस्ट फिक्स ही रहता है मॉर्निंग में। आफ्टर दैट जो ब्रेकफास्ट होता है वो बहुत लाइट ही होता है, लाइट मीन्स कि मतलब लो कैलोरीज, लाइक कि चीला हो गया, ओट्स हो गया, दलिया हो गया। अभी गवर्नमेंट का जो बहुत ज़्यादा फोकस है मिलेट्स पे, जिसको इंडिया में मोटा अनाज बोलते हैं
जी,
तो वो ऑलमोस्ट मेरा फिक्स ही रहता है। एंड जो भी आपका डाइट है ब्रेकफास्ट ठीक लेना चाहिए, हेल्दी लेना चाहिए, लंच भी ओके है, डिनर थोड़ा सा आपका जब भी आपका जो नाइट का शेड्यूल होता है सोने का, जो डिनर है और जो आपका स्लीपिंग टाइम है उसमें एटलीस्ट 2 hours का गैप होना चाहिए जिससे कि जो भी डाइट लेते हैं आप प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। एंड जब भी टाइम मिलता है वीकेंड पे तो वॉकिंग के लिए रनिंग के लिए जरूर जाता हूँ। जो मेरा लोगों को एडवाइस है, लाइक जो गाइडलाइंस हैं कि जो आपका वीक में 30 मिनट एटलीस्ट 5 डेज ए वीक ये आपका वॉकिंग करना है, ब्रिस्क वॉक करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि सबको फॉलो करना चाहिए। वॉकिंग के कई सारे पैटर्न होते हैं, बहुत लोगों का बिजी शेड्यूल होता है, तो लाइक कि जैसे अगर आप सपोज बस से ट्रेवल कर रहे हैं या कोई मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, ट्राई टू कि आप जैसे मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं एक स्टेशन पहले उतर जाइए और वॉकिंग कर लीजिए। बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो एक स्टेशन पहले उतर कर सब निकल करके आप ऑफिस पहुंच जाइए, या आप अगर अपनी व्हीकल से कर रहे हैं तो व्हीकल के बाद में कहीं ना कहीं दिन में भी आपको टाइम मिल ही जाता है कि अपना थोड़ा लंच करने के बाद में वॉकिंग कर लिया 10-15 मिनट का। तो शेड्यूल ये होना चाहिए कि आपका हाफ एन आवर अराउंड 10,000 स्टेप्स पर डे वॉकिंग होना चाहिए।
थैंक यू डॉक्टर फॉर शेयरिंग आपका मॉर्निंग उठने से शेड्यूल से लेके और क्या करते हैं आप। डॉक्टर वर्मा, माय लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वर्मा यू मेंशन इन द बिगनिंग कि आप इस प्रोफेशन में इसलिए आए कि आप हेल्प करने की इच्छा थी आपकी, तो ये पर्सनल क्वेश्चन अगेन लास्ट है कि जिस आपने ये भी बताया कि आप एक छोटी डिस्ट्रिक्ट से, छोटे टाउन से आए, तो आप बिकॉज फ्रॉम अ बिजी लाइफ स्टाइल टूडे स्टिल यू एबल टू गेट सम टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी, स्पेशली लोग आपके डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपके विलेज से हैं, कुछ समय निकाल पाते हैं?
अभी तक मैं एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे था जहाँ बहुत टाइम नहीं दे पा रहा था। अभी जो लास्ट 6 मंथ से जो मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है लोकल लेवल पे, अभी लखनऊ में मैं ऑलमोस्ट 10 कैंप्स कर चुका हूँ डिफरेंट एरिया में, और जिससे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जो हम कैंप कर रहे हैं उसमें लाइक शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है, BMD होता है, PFT, जो बेसिक्स टेस्ट होते हैं फिजिशियन लेवल पे, वो हम लोग करके देखते हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग नए नए केसेस निकल के आते हैं कि पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, पेशेंट इज डायबिटिक, शुगर उनका 200-300 है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है, ब्लड प्रेशर 160-180 उसके बाद भी उनको अवेयरनेस नहीं होता, क्योंकि ये सारी डिजीज जो हैं, डायबिटीज हैं, हाइपरटेंशन है, वो साइलेंट किलर होती हैं, तो इट शुड बी डायग्नोज टाइमली। तो अभी हमने लखनऊ में अपना स्टार्ट किया हुआ है सारा कैंपेन, इसको डेफिनेटली बाहर भी करेंगे, एंड बाहर में भी अभी हमारा जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है जैसे हरदोई में अभी हमने मल्लावा में कैंप किया, अभी हमारा एक कैंप इधर सुल्तानपुर के पास में हुआ है, तो हम लोग करते रहते हैं। अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, ये बेसिकली जो सेकंड अभी इनिंग मेरा स्टार्ट किया है मैंने, तो इसको एक्सटेंड करना है, लोगों का सपोर्ट भी पूरा रहता है इफन, तो उसमें काफी कुछ हम कर पाएंगे आगे।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कि आप इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी शेड्यूल पिछले 6 महीनों में आप ऑलरेडी 10 से ऊपर लखनऊ और उसके नियर बाई एरियाज में भी कुछ कैंप लगा चुके हैं, और थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग स्पेयरिंग योर टाइम फॉर द हैप्पी मोमेंट्स, पल पल की खुशियां। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर।
थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद धन्यवाद।